देखते हैं आज की लेसन को।
वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशा, वो अल्लाह वो है जिसने रहमों के अंदर, सूरह ज़ुमर में आता है कि उसने तुम्हें पैदा किया तुम्हारी माओं के रहमों में, तीन अंधेरों में, तीन तारीख पर्दों में, तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला गया। वो अल्लाह है तुम्हारा रब जिसके ये काम है कि जिस वक्त ना माँ को पता ना बाप को पता कि ये बच्चा कैसा बन रहा है अंदर अंधेरों के अंदर है, ना माँ का कोई जोर है, हर माँ चाहती है मेरा बच्चा ऐसा हो, ऐसा हो, उसकी आंखें ऐसी हो, उसका रंग ऐसा हो, उसके बाल ऐसे हो, उसका फलाना ऐसा, मेरे ऊपर जाए बस। वो जब पैदा होता तो किसी और के ऊपर होता, ना माँ का क्या जोर था या बाप का क्या जोर है। अगर जोर तुम्हारा चलता है तो लगाओ अपना जोर, तुम्हारे पेट में है ना बच्चा, लगाओ जोर। लेकिन देखें कोई और नहीं जिसकी वहां रसाई है, वो अंधेरों के अंदर तस्वीर कशी करता है, और कैसी तस्वीर कशी करता है, सुभान अल्लाह, कैसा नक्शा बनाता है। इतना सा कैनवस है ना, छोटा सा चेहरा होता है, कितना छोटा है, इतने से कैनवस पे उसने कैसी तस्वीर बनाई है, कि हर एक चेहरा दूसरे से अलग है, हर एक रंग दूसरे से अलग है, हर एक की आंखें, हर एक के होंठ अलग अलग है, कोई एक जैसे नहीं कह सकते। इवन ट्विंस भी होते हैं तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। वो ऐसा मुसव्विर है, कैसे उसने ये तस्वीर कशी की कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सुभान अल्लाह नाखून, पलकों के बाल और उसके कान, उसकी आंखें, उसके नाखून, इवन यहां तक कि आप उसका हाथ खोलते हैं ना तो उसमें भी लकीरें भी बनी होती हैं, सुभान अल्लाह, छोटी छोटी प्यारे प्यारे पांव, ये अल्लाह ताला की तखलीक का शाहकार, सुभान अल्लाह, की अकल भी दंग रह जाती है कि इन अंधेरों के अंदर किसने ऐसा ऐसा वजूद पैदा कर दिया, किसने ये बना दिया। मां कह सकती है मैंने बनाया, किसने बनाया। फिर जो खुदा का इनकार करते हैं वो जरा जवाब तो दे, इसकी तुम क्या तावील करोगे। एक नुतफा था पेट में, ठीक है, और उससे कैसे ये बच्चा बना, कोई बता सकता इसका जवाब। फिर क्या अकल तस्लीम नहीं करती कि कोई खुदा है, एक अल्लाह है। और फिर देखें सुभान अल्लाह, अंधेरे हैं, अंधेरी फैक्ट्री के अंदर बन रहा है बच्चा, ना ऐसा है कि आंख ऊपर लगी हुई है, एक दूसरी नीचे लगी हुई है, कान कोई ऊपर चला गया कोई नीचे चला गया, टांग एक छोटी है एक बड़ी है, उंगली को हाथ पे लगने की जगह कहीं और लग गई है, ऐसा कुछ नहीं, बैलेंस्ड बिल्कुल, जैसे किसी ने निक सुख से संवारा हो। फी अय्य सूरतिन मा शाअ रक्कबक, अल्लाह ताला ने जैसे चाह तुम्हारी तस्वीर बनाई, सुभान अल्लाह। के फिंगरप्रिंट्स भी आप बच्चे के ले लेना तो वो भी यूनिक होंगे, फिंगरप्रिंट्स तक उसके बने होते हैं, सुभान अल्लाह। तो ये जो सारी शक्लें बनाई ये उस रब ने बनाई, कैफा यशाउ, जिस तरह वो चाहता है। इसका मतलब मैं और आप जब शीशे में खड़े होकर कहते ना आए ये मेरे इस तरह से होते ना बाल तो फिर कितना अच्छा था, मेरी आंखों का ये कलर होता ना तो फिर कितना मजा आता, मेरा कद ऐसा होता ना तो फिर कितना। नहीं, कहो कैफा यशाउ, ये अल्लाह ने तखलीक किया, ये अल्लाह ने बनाया, फिर एतराज कैसे, ये अल्लाह की प्लानिंग है। और देखें मैं पिछले दिनों देख रही थी टीवी पे, स्क्रीन में एक तरफ एक बहुत गोरा आदमी था और आधी स्क्रीन पे दूसरी तरफ वो किसी से इंटरव्यू ले रहा था, इतना स्याह काला था कि उससे ज्यादा स्याह काला नहीं हो सकता, और जो गोरा था उससे ज्यादा गोरा नहीं हो सकता। अब मैं ये सोच रही थी कि सुभान अल्लाह, इन दोनों को तखलीक अल्लाह ने किया है। अब जो इस काले के अंदर कोई बिगाड़ कोई नुक्स निकालता है या उसको हकीर समझता है, उसने क्या किया, उस बेचारे उसका क्या आप कसूर, अपना रंग बनाने में अपनी शक्ल बनाने में उसका तो कोई नहीं है। किस चीज पे, किस पे आपने इतराज किया जब आपने कहा आय हाय देखो जरा, बाज़ औरतें रिश्ता देखने जाती हैं तो वो लड़कियों का कहती हैं उसकी तो नाक ऐसी थी, वो तो उसका रंग ऐसा था, उसके तो होंठ ऐसे थे, दांत ऊंचे थे, आंखें बड़ी छोटी छोटी हैं, किस पे इतराज़ कर रहे हैं, उसने तो नहीं अपने आप को बनाया। ना वो काले ने अपने आप को ये रंग दिया, ना गोरे ने अपने आप को ये रंग दिया, तो पीछे कौन है? जिसने उसके अंदर कोई नुक्स निकाला, उसने अल्लाह की तखलीक में नुक्स निकाला। तुम कौन होते हो अल्लाह की तखलीक में नुक्स निकालने वाले? और जिसने वो किसी की तारीफ की, तो उसकी क्या तारीफ है? तारीफ तो करनी है तो अल्लाह की करो, और नुक्स ना निकालो, क्योंकि इनडायरेक्टली तुम किसमें नुक्स निकाल रहे हो कि अल्लाह ने बड़ा गंदा बनाया। कितनी बड़ी बात है जो इंसान अपनी जुबान से निकालता है जब वो ये कहता है, और वो रियलाइज भी नहीं करता कि वो क्या कह रहा है। और कितने मजे से बैठ के हम ऐसे कमेंट्स दे देते हैं ना लोगों पे, हमें कभी सोचते भी नहीं है कि हम किसके ऊपर ये बातें बना रहे हैं। इसके बाद, ये पढ़ने के बाद, कैफा यशाउ पढ़ने के बाद, आप कभी जिंदगी में किसी की शक्ल पे, किसी की सूरत पे, किसी की रंगत पे कोई एतराज कर सकेंगे? जब साफ उसने कह दिया युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, जैसे उसने चाहा, आपको उसकी उसकी चाही हुई चीज जो उसकी उसने प्लान किया, जो उसने तस्वीर की वो पसंद नहीं आई? अल मुसव्विर उसका नाम है, उसकी सिफत है, वो तस्वीर कशी करता है। और कितनी दफा अगर हमने ऐसा कहा हुआ तो हमें तौबा करनी चाहिए, क्योंकि आपने बुरी बात कही हुई है मुंह से। हर शक्ल खूबसूरत है, क्योंकि हर शक्ल और हर रंगत उसकी बनाई हुई है। असल बात यह है ना कि रब से मोहब्बत होगी तो कहेंगे ना मेरे रब ने बनाई है ना। जैसे इकरमा ने कुरान पाक को खोला, तो जब मुसलमान हो गए थे ना, फिर कुरान जब पढ़ा करते थे, रोते थे, खोल के कहते थे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। इसी तरह हम जब अल्लाह से मोहब्बत करने लगेंगे ना, तो फिर हर सूरत को देखेंगे ये मेरे रब ने बनाई नहीं, मेरे रब का बनाया हुआ है। ये रंग भी उसने दिया है और ये रंग भी उसने दिया है, सुभान अल्लाह, फिर एतराज नहीं कर सकेंगे। ये जो जुबाने खुली होती ना एतराज करने के लिए, वो इसलिए कि अल्लाह की पहचान नहीं है और उससे वैसी मोहब्बत नहीं है जैसे होनी चाहिए। इसीलिए फिर कीड़े निकालते हैं लोगों में। आप मुझे बताएं, इतना सा भी, जर्रे बराबर भी किसी का बस है अपनी शक्ल बनाने में? जर्रे बराबर भी नहीं है? तो फिर मान लेना कि ये सब वाकई अल्लाह ने ही बनाई है। और मैं कौन होती हूं कि मैं अल्लाह के मुकाबले में खड़ी होकर कहूं कि अल्लाह तूने नहीं सही बनाई? और गहरे अंधेरों में माँ के पेट का अंधेरा है, यूट्रस का अंधेरा है, उसके अंदर झिल्ली है, उसके अंदर वो बच्चा बन रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की नजरों में वो बन रहा है। जब भी एक एक चीज उसकी ऐसे संवारी हुई कि जब निकलता तो कैसा एक जबरदस्त चीज होती है, हर एक को प्यार आता है, सुभान अल्लाह। मैं तो कहती हूँ इंसान क्या, जानवर के बच्चे पे भी प्यार आता है, इतना वो प्यारा होता है। जितना कुछ रहमों में पल रहा है, जितना कुछ बन रहा है रहमों में, वो अल्लाह बनाने वाला है, वो सूरतें देने वाला अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, कोई इला उसके सिवा है ही नहीं। ओ लोगो, जब तुम्हारी सूरत गरी करने वाला वो, जब माओ के पेटों में तुम्हें बनाने वाला वो, तो फिर पैदा होके किसी और को इला बना लेते हो, कहीं और जाके सजदे करने लगते हो, कहीं और हाथ उठाते हो, किसी और के नाम की माला जपते हो, फिर किसी और के जिक्र हर वक्त जुबान पे रहते हैं, फिर अल्लाह ही भूल जाता है तुम। ला इलाहा इल्लाहु अल अजीज अल हकीम। मैंने जैसे बताया, अजीज वो है जो फुल अथॉरिटी रखता है, वो जैसे चाहे बनाए, तुम कोई एतराज करने वाले नहीं हो, वो जैसे चाहे, उसकी पावर है, उसकी अथॉरिटी है, कोई दखल नहीं किसी का। किसी को चपटी नाक दे दे, तीखी दे दे, गोरा रंग दे दे, काला दे दे, उसका फैसला है, और वो हकीम है, हिकमत वाला है, उसकी हर काम में हिकमत है। अगर उसने किसी को कैसा भी बनाया, उसमें भी उसकी हिकमत है। हमने जब कह दिया ना अलिफ लाम मीम पढ़ के, कि हमने सरेंडर कर दिया अपनी अकल, तो हम हिकमतें नहीं जान सकते, बता दिया गया हमें तुम सारी चीजें नहीं समझ सकोगे, तो अभी इतराफ कर लो। हमने इतराफ किया तभी आगे हमने पढ़ना शुरू किया ना, फिर उसके बाद ये कहाँ से आ जाता है, हाँ इसको ऐसा क्यों बनाया, इसको ऐसी शक्ल क्यों दी, ये तो ऐसा होना चाहिए था, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अनजल आले कल किताब, अब देखें यहां पे अब आप बात को समझें कि वो जिसके से कोई चीज मख्फी नहीं है जमीन की और ना आसमान की, वो जो रहमों में तुम्हारी शक्लें बनाता है, तुम्हें शक्ल देता है जैसे वो चाहता है, उस अल्लाह ने ये नाजिल की है या किताब। अब कुछ किताब की एकदम अजमत दिल में आई, अच्छा वो अल्लाह जिसका इल्म इतना है कि कोई चीज आसमानों जमीन में उससे छुपी भी नहीं है, उस अल्लाह ने नाजिल की है ये किताब, यानी कि कितना अजीम कलाम है। फिर कि आप कोई भी चीज, आपको मसलन कोई बीमारी, अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज हो जाती है, हार्ट की मसलन किसी को अल्लाह ना करे बीमारी हो जाती है, तो किसके पास जाता है, किसी शॉपकीपर के पास, किसी नाई के पास, किसी धोबी के पास नहीं जाता, किसके पास जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ये क्यों, आप किसी और के पास चले जाते ना, किसी बढ़ई के पास, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन के पास जाके क्यों नहीं दिल का इलाज कराते, नहीं आप कहते हैं उनके पास इल्म नहीं है ना, जो इस इल्म का माहिर है मैं उसके पास जाऊं, और जिसके पास फिर जितना पैसा होता है वो उतने बड़े डॉक्टर के पास जाता है, वो जी उसके पास इतनी डिग्री है, वो तो फलानी जगह से पढ़ के आया है, ऐसे ही होता है ना। क्या बात है कि इसमें तो हम इतने सियाने हैं कि हम अपना दिल का इलाज जाके किसी बेइल्म से नहीं कराते, जो उस इल्म को जानता ही नहीं उससे नहीं कराते, माहिर से माहिर ढूंढते हैं। लेकिन जिंदगी में हिदायत कहाँ से लेनी है, उस सोर्स को छोड़ के जो हर चीज को जानता है, जो भी जमीन में और आसमान में, उसको छोड़ के कभी उस इंसान के पास जाते हैं जहां ये बताएगा कि जिंदगी कैसे गुजारनी, ये हमें बिजनेस के तरीके बताएगा, ये हमें बताएगा क्या हलाल है क्या हराम है, कैसे चलना है जिंदगी के अंदर, कामयाब कामयाब कैसे होना है, ये हमें एटिकेट सिखाएगा, ये हमें पहनना सिखाएगा, ये हमें बोलना सिखाएगा, ये हमें माशरती मामलात सिखाएगा, जो ये कहेंगे वो ठीक होगा। कोई सेलिब्रिटीज होंगे, कोई मॉडल्स होंगे, कोई और साइंटिस्ट होंगे, या कोई किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई, उनसे जाके पूछते हैं कैसे चलना है जिंदगी में, ये बताएंगे, ये मॉडर्न है ना, इनको पता है, और वो इन अल्लाह ला यख्फा अलैहि शैइउन फिल अर्दि वला फिस समा उसको पीछे छोड़ देते हैं। यहां पे नहीं समझ आती कि जिसके पास सारा इल्म है उससे जाके मैं पूछूं, अपनी जिंदगी के हर मामले में उससे गाइडेंस लूं, वो मुझे गाइड करेगा, क्यों, इसलिए कि उससे तो कोई चीज छुपी ही नहीं हुई आसमानों जमीन की, वो मुझे बताएगा, वो अल्टीमेट जिसका इल्म लामहदूद है, उससे क्यों ना जाके मैं पूछूं, मैं क्यों जाके उनसे पूछ रही हूं जिनको अपनी खबर नहीं है, जिनको अपने कल का पता नहीं है, उन्होंने मरना भी है कि जिंदा रहना, जिनको अपने कल का पता नहीं है कि उनकी जिंदगी में क्या हादसा होने वाले, जिनको अपने जिस्म का भी नहीं पता उनके अंदर कितनी बीमारियां पल रही हैं, कल को उनके लिए क्या डायग्नोज हो जाता है, जो बेचारे इतने बेबस और बेइल्म है, उनको ये नहीं पता कि मेरे पीछे अभी कौन क्या बात कर रहा है, इतने बेइल्म से जाके आप गाइडेंस चाहते हो और अल्लाह की बात को छोड़ देते हो, अल्लाह से पूछो ना, उससे रहनुमाई लो, उस अल्लाह ने सिर्फ पैदा नहीं किया, उसने तुम्हारे लिए एक गाइडेंस का भी इंतजाम किया कि मेरे बंदे भटके ना इस जिंदगी में, देखिए ये दिस इज लव, उसके आप इस चीज को समझे कि ये कुरान बोझ नहीं है, ये मुशक्कत नहीं है, सूरह ताहा की स्टार्ट में ही अल्लाह ताला ने फरमाया नबी हमने आपके ऊपर ये कुरान मुशक्कत के लिए नहीं नाजिल किया, ये बोझ नहीं है, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, ये तो उसकी मोहब्बत है, ये तो उसका रहम है कि उसने हमें कहा कि ये लोग भटकेंगे, इधर ठोकरें खाएंगे उधर ठोकरें खाएंगे, और जैसे माँ बाप बच्चे को समझाते हैं ना, बेटा एक जमाना तुम्हें सिखा सकता है लेकिन मैं तुम्हें आज अपने तजर्बे से वो बातें सिखाता हूँ जो तुम्हें 80 साल में जाके समझ आएंगी, बेटा मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ उसको सुनो, बच्चे कहते हैं हमें क्या, वो गलतियां करके सीखना चाहते हैं, वो ठोकरें खा के फिर संभलना चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं इनको ठोकर ना लगे, माँ बाप उनको पहले समझाते हैं, मतलब हालांकि वो बेचारे माँ बाप ही होते हैं, उनको भी इतनी तो नहीं समझ। यहाँ पे तो रब, कायनात का मालिक, खालिक, जानने वाला वो समझा रहा है हमें, और हम उसकी रहनुमाई, उसकी दी हुई गाइडेंस को छोड़ के और पसंद करते हैं कि हम ठोकरें खाएं कहीं जाके, हम गिरे, हम उठे, हम फिर उसके बाद फिर कोई तजर्बे करें, फिर हमें कोई समझ आए, कहीं थप्पड़ पड़ेंगे तो समझ आएगी। क्यों? तो उसकी तो मेहरबानी है कि उसने तुम्हें रास्ता दिखा दिया इस जिंदगी में भी सही चलने का और जन्नत तक पहुंचने का भी, तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। इसीलिए अर्रहमान अल्लम अल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। ये रहमान की सबसे पहली, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका मुजाहिरा, उसकी रहमत का क्या है, कैसे पता चलेगा कि वो हम पर रहम करने वाला है? सबसे पहली बात ही ये फरमाई कि उसने कुरान सिखा दी। सुभान अल्लाह। अब आप और मैं उसको रहमत समझे ना समझे वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उसने हमें हिदायत दी थी, राह दिखा दी, वरना हम तो अंधे थे। तो वो लदी अनजल अलैकल किताब, उसने नाजिल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब। इस किताब में ना दो तरह की आयात हैं, अब जिनका जिक्र यहाँ पे आ रहा है। एक क्या है, मिन्हु आया, इस किताब मिन्हु की जमीर किधर जा रही, इस किताब की। इसमें से आया तो मोहकमात, नंबर वन कौन सी आयात है जो मोहकम है। मोहकम आयात क्या होती है? मोहकम आयात मतलब जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो हमें समझ में आ सकती हैं, जिन 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 पे अमल करना है, ठीक है, जो अमल की बातें हैं वो भी मोहकम में आ गई। मोहकम में एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ। इसी तरह मोहकम में वो भी सारी आयात आ गई जिनमें पुराने किस्से हैं, पुरानी अकवाम के, जिनके अंदर नसीहत की बातें हैं, कायनात की निशानियों के ऊपर बात कही, ये आसमान की तरफ देखो, जमीन की तरफ देखो, देखो इन चीजों को देखो, जितनी ये सारी बातें जो हैं ये मोहकम में हैं। इबादात हैं, अखलाक है, फराइज हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ये सब चीजें हलाल है, हराम है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, तौहीद है, बिल्कुल क्लियर है। तो एक तो ये है, हुन्ना उम्मुल किताब, ये बैकबोन है किताब की, ठीक है, ये जो कानून है, शरीयत है, ये सब ये बैकबोन है, ये जड़ है, ये बेस है, ठीक। अच्छा, अब नंबर टू भी, इसमें एक और कैटेगरी भी है आयात की, वो कौन सी है? वह उखारो मुतशाबिहात, और दूसरी ऐसी हैं जो मुतशाबे हैं। मुतशाबे मीन्स क्या? जिनके माने में कोई शुबे की गुंजाइश हो, यानी जिनका माना हमारी समझ में नहीं आ सकता। देखिए पहले ही बता दिया गया ना कि हर चीज तुम्हें समझ नहीं आएगी, अलिफ लाम मीम से समझ आ गई नहीं, ये बात हर चीज नहीं तुम्हें समझ आएगी, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें भी, इश्तेबाह में डालने वाली भी चीजें हैं, एक जैसी नजर आती हैं, या जिनका जिनकी हकीकत इंसान समझ नहीं सकता। अब उनमें एग्जाम्पल्स क्या हैं? मसलन है, आपको बताया जाए, अल्लाह ताला का अर्श, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, और फॉर एग्जाम्पल ये कुरान में आता है अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है। अब वो कैसे मुस्तवी है? क्या वो अर्श पे बैठा हुआ है? नाऊज़ु बिल्लाह, हम ऐसे नहीं कह सकते। वो उसकी हकीकत वो ही जानता है, हमें नहीं पता, हम यहाँ पे गिव अप करते हैं, ओके। अल्लाह की कुर्सी है, वो कैसे है कुर्सी? क्या वो एक स्टूल है? क्या वो क्या है? हम नहीं जानते, वी गिव अप, हमने अपने हाथ उठा दिए, ठीक है, हमने कहा कि नहीं, ये ऐसी आयतें हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकती, बजाय क्या उसके अंदर बहसें शुरू कर दें। अच्छा, अल्लाह ताला ने अपने हाथ की बात की, अपने चेहरे की बात की, हम नहीं समझ सकते इसकी हकीकत। अल्लाह का हाथ कैसे, एक हमारा हाथ है, हम ऐसे नहीं कह सकते जैसे हमारा हाथ है वैसे अल्लाह का हाथ, हम ऐसे नहीं कह सकते हम जैसे हमारा चेहरा है, ऐसे नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला। और हराम है ये, हराम है ये, सुन ले मेरी बात को, हराम है ये कि आप अपने जहन में अल्लाह का कोई तसव्वुर लेकर आए कि अल्लाह ऐसा कोई एक एक शक्ल आपके जहन में है, ये हराम है, क्योंकि आप अल्लाह ताला को नहीं इमेजिन कर सकते। اتنی سی بات سے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا، وہ ایسی ہے کہ جس کو نہ کسی نے آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے. حالانکہ جنت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق کا بھی آپ تصور نہیں کر سکتے تو خالق کا کہاں سے کریں گے؟ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ جنت نہیں ہے تصور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تصور ہی نہیں کر سکتے. تو رب کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کبھی بھی نہ ذہن میں یہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے، یہ ہیں متشابہ چیزیں. اس طرح ہم مثال کے طور پہ ہم اپنی کرنا چاہیں، باقی چیزوں کو ہم تصور کر سکتے ہیں، ہم ذہن میں کوئی تصور کریں کوئی آگ ہے، کچھ بہت چاہے اس طرح کی جہنم ہوگی، پتہ نہیں کیسی ہوگی، پتہ نہیں پل سرات ایسا ہوگا، دماغ میں ایک آتا ہے چیزیں، وہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے بارے میں کبھی کوئی تصور نہ کریں، کوئی شکل نہ بنائیں اپنے ذہن کے اندر. اور جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے ذہن کے اندر کوئی باغ لے کر آتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں، محلات لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر یہ ساری متشابہ چیزیں ہیں، ان کی ہمیں سمجھ نہیں ہو سکتی. جب کہا جاتا ہے کہ جہنم کے اندر اس طرح کا، اس طرح تھوہر کا ہے، زقوم کا ہے پودا، ایسے ہے، اس میں سے کھائیں گے، اس میں ایسا پانی ہے جو وہ پئیں گے، تو پھر اب ذہن کے اندر آئے لو وہاں کا تو ٹیمپریچر اتنا ہے، تو پھر یہ کیسے ہوں گے وہاں پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جنت کے اندر تو اس طرح ہے، وہ وہاں سے توڑیں گے پھل کو اور پھر وہ واپس وہیں پہ لگ جائے گا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہاں پہ تو نہ کسی کو باتھ روم آئے گا، نہ کسی نے بوڑھا ہونا، نہ کسی کو بیماری لگے، یہ کیسے پھر ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں یعنی ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہماری عقل سے بیونڈ چیزیں ہیں. اس لیے ان کے اوپر بحثیں کرنا، ان کے اوپر باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ آگے ہم بات کریں گے اس کے اوپر، لیکن یہ ہے متشابہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ قرآن میں ایک ہے جو محکم ہے اور ایک ہے متشابہ آیات. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ایک دل ایسے ہیں جن میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے. دل ہی خراب ہے تو پھر آگے کیا ہوگا، مجھ خود ہی بتائیں نا، ایسے ٹیڑھے دلوں سے تو ٹیڑھی باتیں نکلیں گی نا. تو فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فَيَتَّبِعُونَ، وہ اتباع کرتے ہیں کس کی؟ ماں تشابہ منہ، جو شبہ میں ڈالتی ہیں اس میں سے. منہ ہو کی ضمیر کس طرح جاری؟ اس کتاب میں سے. جو متشابہ آئے ہیں نا، بس وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ ابتغاء فتنہ، تھی فتنہ نکالنے کے لیے. وابتغاء تاویلی، اور اس کی تعویل جاننے کے لیے، اس کے اندر سے من مانی تعویلیں کرنے کے لیے. اس لیے وہ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ دیکھیں نا، اب محکم میں سے تو کوئی وہ چیزیں نہیں نکال سکتے، ان کو کیا، وہ تو کلیئر ہے. ان کا جو اندر ٹیڑھا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو نکال کے اس سے لوگوں کو بہکاتے ہیں، فتنے نکالتے ہیں. انہوں نے ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو بہکائیں، بھائی یہ کیا بات ہوئی، تو تمہاری تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے ایک تہائی رات میں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہ کسی وقت یہاں پہ رات ہے، کسی وقت کہیں اور رات ہے، تو پھر کیا، یہ پھر اس کی حقیقت بتاؤ. اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کہیں گے ہائے اب ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں، یہ متشابہ چیزوں میں سے ہیں، چاہے وہ حدیث میں ہے، چاہے وہ قرآن کی آیات میں. نہیں، اللہ تعالیٰ پھر کیسی ہے عرش کے اوپر، یہ بتاؤ. پھر اس طرح قیامت کے اندر یہ پھر کیسے ہوگا؟ 50,000 سال کا دن، تو 50,000 سال میں کیا انسان مر نہیں جائے گا؟ وہ کھائے پیے بغیر کیسے رہے گا؟ وہ سوئے بغیر کیسے رہے گا؟ تو کئی چیزیں ایسی نا جن کے اندر سے وہ اس طرح کے بگاڑ نکالتے ہیں، ایسی ٹیڑھ پن نکالتے ہیں، کیونکہ اندر اپنے کجی ہیں نا. تو اب فتنہ تو پیدا کرنا ہے، لوگوں کو بھی ہٹانا ہے اس سے، لوگوں کو بھی دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایمان بالغیب، اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ایمان بالغیب میں. اور وہ اسی طرح کیے جاتے ہیں کہ ایسی ایسی آیتیں لے کے، ایسی ایسی حدیثیں لے کے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے. اور میں نے آپ کو کیا کہا کہ اس صورت کے اندر جم جانے کا، ثابت قدمی کا میسج ہے. آپ نے جم جانا، ایسے لوگوں کے وسواس اور شکوک و شبہات میں نہیں آنا. اب یہ آیتیں پھر کیوں ہیں؟ یہ بھی ان کے لیے ٹیسٹ ہے، ایسے لوگوں کے لیے. ये ऐसे मजामीन, अब मसलन अलिफ लाम मीम के पीछे कोई पढ़े, अब जब इसका कोई माना नहीं बताया गया तो फिर इसके पीछे क्यों पढ़ गए? बाज दफा लोग इसलिए चाहते हैं कि हम कोई नई नई बातें लेकर आए ना, नई बातें, कोई नई चीज निकालेंगे तो फिर उससे कुछ हुआ। मसलन किसने कहा, भाई आप बताएं असहाबे काफ का कुत्ता इस वक्त कहां पे है, आपको पता है कहां पे? उसने कहा नहीं पता। उसने कहा वो तो जन्नत के अंदर घूम रहा है असहाबे काफ का कुत्ता। भैया आपको इससे क्या, असहाबे काफ का कुत्ता कहां से आया, क्या हुआ उसका, क्या नहीं हुआ, ये कोई अमल की बात है? नहीं, इस वक्त बताएं इस वक्त जो अंबिया है वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त बैठे हुए उनकी क्या एक्टिविटीज है, ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर क्या इस वक्त कर रहे हैं, भाई आपको इससे क्या? तो यानी ऐसी चीजों के पीछे ना पढ़ो कि नए नए फितने निकाल लो उनसे। इसका मतलब है कुरान के भी दोहरे असरात हैं, यानी कुछ लोगों के लिए जिनके दिल ही टेढ़े हैं उनके लिए गुमराही है। इसी से हमने शुरू के अंदर भी पढ़ लिया था ना, ये दिलु भी कथीरा वो यादी भी ही कथीरा, इसी कुरान से लोग भी बहकते हैं और इसी कुरान से हिदायत पाते, और या फिर नए नए माने निकालने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं ऐसी ऐसी आयात के, दिलों में जो टेढ़ है, और फिर लोगों को जो हटाना है हक बात से, तो अब उनके अंदर भी तो कुछ ऐसे शकुक व शुभात पैदा करने हैं ना, तो फिर यहां से लाते हैं वो चीजें। हजरत आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की और फरमाया जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबे आयात के पीछे पड़े हुए हैं तो याद रखो ये वही लोग हैं जिनका अल्लाह ने इस आयत में जिक्र की। ठीक है कि इनको छोड़ देना चाहिए, जब आपको पता चलता है ना कि ऐसे लोग हैं जो इन चीजों के अंदर खोज में लगे हैं, छोड़ दें उनको, उनके पास ना जाएं, ये गुमराह करने वाले, ये फितने पैदा करने वाले, नई से नई बातें उसमें से निकालने वाले हैं। तो इनका जौक ही क्या होता है, इनका शौक क्या होता है, बस दौड़ते हैं मुतशाबे की तरफ। भाई अमल की बातों को लो, जिनकी चीजों का आपकी जिंदगी के अंदर कोई काम है उनके पीछे जाओ या उसमें बहस करने लगे अल्लाह का हाथ कैसा है फिर। और इसी चीज के ऊपर ना, अल्लाह की औसाफ के ऊपर यहीं पे लोगों ने ठोकर खाई और कई फिरके बने, लाइक मोतजिला का फिरका, तो ये एक फिरके का मैं नाम ले रही, और भी कई, तो ये यहां पे ठोकर खाते हैं। इसके ऊपर बात करने के हम कहें कि बस अल्लाह, हम हमारी अकलें कहाँ अल्लाह ताला तेरे तक जान सकती हैं, तो जो पहचान सकती हैं अल्लाह जैसा तू है तुझको मालूम है, हम नहीं जान सकते क्या, अल्लाह की जात को हम नहीं समझ सकते, अरे वो कैसे हई और कयूम, हई कैसे है भाई वो? अब कुछ लोग ये कहते हैं नहीं वो ये बताए ना वो हमेशा से कैसे है फिर ना, हमेशा से कैसे है? तो यही तो हदीस में आया ना कि शैतान कहेगा तुम्हें किसने पैदा किया, अच्छा फिर उसको किसने पैदा किया, अच्छा फिर जब कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया तो कहेगा अल्लाह को फिर किसने पैदा किया, ये वसवसे डालता है दिल। तो अमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, इनकी तावील जो है, जबकि ये मुतशाबे आयात की तावील अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, जब अल्लाह के सिवा उनकी हकीकत उनकी तफसीर नहीं कोई जानता तो फिर इसके पीछे क्यों पढ़ते हो? वर्रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में रसूख रखने वाले, इल्म में पुख्ता हैं, वो क्या कहते हैं, उनका रवैया आप देखें, यकूलूना वो कहते हैं आमन्ना भी, हम ईमान लाए इसके ऊपर। ये जो भी मुतशाबे हैं मुहकमात हैं सबके ऊपर हम ईमान लाए, कुल्लुम मिन इंदी रब्बीना, सब हमारे रब की तरफ से, जब उसने नाजिल किया तो उसकी तरफ से है, हम बस ईमान लाए, हमने ये नहीं किया ना कि ये फिर कैसे है वो कैसे है, ठीक है, लेकिन ये सब के नसीब में नहीं होता। अमा यदक्कर इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर अकल वाले, अकल वालों को सिर्फ ये बात समझ आती है। तो यहाँ पे रासिखूना फिर इनकी तारीफ है कि वो लोग जो इल्म में गहराई रखते हैं वो इन चीजों के पीछे नहीं जाते, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं हम ईमान लेकर आए। तो सारी ये आयतें अल्लाह की तरफ से, जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पास आए थे काफिर भागे हुए, बड़े खुश के, अब क्या कहेगा अब देखते हैं, भाई तुम्हारे साथी ने तो कहा है कि वो बैतुल मकदस होके आया और आसमानों तक होके आ गया एक ही रात में, पूछते हैं क्या उन्होंने उन्होंने खुद कहा है? काफिर कहने लगे हाँ, فرمایا پھر میں تصدیق کرتا ہوں، پھر میں مانتا ہوں. اب آپ دیکھیں کیوں وہ مانے، اس لیے کہ میری عقل میں پڑے نہ پڑے کیسے ہو سکتا ہے ایک رات میں یہاں سے، لیکن بس میں مان گیا اس لیے کہ وہ سچوں کے سچے نے کہا. اور یہ کلام اللہ کا ہے، جب اس نے بتایا ایک جنت ہے ہم نے مان لیا، اس نے بتایا قیامت ہے ہم نے مان لیا. کیسے ہوگی جنت، وہ پھر کیسی ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی بنی ہے کہ نہیں بنی، پتہ نہیں شاید اس وقت ہی بنا. جہنم کیسے ہو سکتا ہے اتنا ٹیمپریچر ہو، نہیں جب اس نے بتا دیا جہنم ہے اور ایسی ایسی ہے ہم نے مان لیا. کیسے ہو سکتا ہے اس میں پلانٹس اگ رہے ہوں آگ کے اندر، نہیں ہم نے مان لیا. جب ہمیں بتا دیا گیا ہم نے آگے کوئی کوشچن نہیں کیا. ہمیں بتایا گیا اللہ عرش پہ مستوی ہے، ہم نے ایز اٹ از مان لیا، ہم نے کہا آمنا بھی. کل من عند ربنا، اس کا ہاتھ ہے، اس کا چہرہ ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بس ہم نہیں آگے جانتے کہ کیا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ رویہ کن کا ہوتا ہے؟ راسخون فی العلم کا. راسخون فی العلم ہوتے کون ہیں جن کی اتنی زبردست تعریف آ گئی؟ ایک تو وہ ہیں جن کے دل ہی ٹیڑھے ہیں، راسخ یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کا علم پختہ ہے. پختہ علم کیسے پختہ علم ہو جاتا ہے؟ پختہ علم یہ ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، نہ واٹس ایپ کے اوپر یہ ویڈیو دیکھنے اور بس وہاں پہ میسیجز پڑھنے اور کسی کبھی کسی کی ویڈیو آ گئی وہ دیکھ لی ہو، یا کیو ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے. کچھ لوگ اپنا دین کیو ٹی وی سے بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وہ چینل دیکھ لیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اب بس ہم راسخون فی العلم ہوگا. نہ اس سے بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے ہوتا ہے کہ بس سال میں ایک دفعہ رمضان آیا اس میں دورہ قرآن کر لیا اور اس کو سمجھا کہ بس میں راسخ ہو گئے علم میں. یاد رکھیے دورہ قرآن بھی اس کو فائدہ دیتا ہے جس نے پہلے سے قرآن پڑھا ہو، پڑھ رہا ہو، کیونکہ وہ تو ایک دورہ ہے نا، وہ تو ایک جسٹ گوئنگ تھرو ہے. اب جس کو سمجھ ہی نہیں ہے کسی آیتوں کی، ہم مثلا ہم اگر 2-3 گھنٹے لگا کے 10-12 آیتیں کرتے ہیں تو یہ بھی کم ہے ان آیتوں کو سمجھنے کے، ان میں اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے. اور تو ایسے لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم نے بس دورہ کر لیا تو ہمیں سارا قرآن سمجھ آ گیا، اس سے رسوخ نہیں آتا. رسوخ آتا ہے بار بار پڑھنے سے. بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، اس کو ڈسکس کرو، اس کو عمل میں لے کر آؤ، اس سے آتا ہے رسوخ. یہ رسوخ پانا، رسوخ کا مطلب ہے جم جائیں، اس کے اوپر جماؤ آ جائے. اور جماؤ ایسے ہی تھوڑی آتا ہے، یہ بس ہم نے ایک دفعہ، جب کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نے سرٹیفکیٹ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی سرٹیفکیٹ کے لیے پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ کیسے رسوخ پا سکتا ہے؟ ہم نے تو کر لیا نا، ہم نے ایک دفعہ سرٹیفکیٹ لے لیا، اب کیا ضرورت؟ یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں رسوخ. ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ایسے تھوڑی آ جاتی. علم کے درجے ہیں نا. بعض نے اب یہ دیکھیں رمضان کے اندر کوشچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے، ان کا علم بس اتنا ہی ہے کہ کوشچن آنسر میں بیٹھ گئے، ہر سال وہی کوشچن آنسر ہو رہے ہیں، ہر سال پوچھا جا رہا ہے اچھا جی روزے کا فدیہ کیا ہے، ہر سال پوچھا جا رہا ہے اچھا زکات فلان کی کتنی ہے، اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، ہر سال یہی کوشچن ہے. یہ ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے کہ آنسر پوچھ لی. ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد بیٹھ گئے، اس کے بعد تو جو پہلا پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا. جب آپ ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیں گے تو پہلا بھی جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ انسان بار بار اس کو دہرائے، بار بار اس کو دہرائے. دیکھیں کوئی چیز بھی جذب کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ بار بار اس کو پڑھنا، اس سے رسوخ آتا ہے، اس میں پختگی آتی ہے علم کے اندر، جماؤ آتا ہے، ایسے ہی نہیں آ جاتا. یہ آسان تھوڑا ہی ہے. آپ بڑوں کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ وہ کس طرح انہوں نے قرآن کے ساتھ وقت لگایا. مجاہد نے، مفسر قرآن ہے، 30 دفعہ ابن عباس سے قرآن سیکھا، 30 دفعہ. تو ایسے نہیں ہے کہ ہم جس طرح ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں بس سال بھر میں قرآن ختم ہو جائے، ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے، یہ اس سے پختگی نہیں آئے گی. اصل پختہ علم اگر لینا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، وقت لگانا ہوگا، قربانی دینی ہوگی. کچھ کہیں کہیں سے وقت نکالیں گے تو یہ اس کو دیا جائے گا. جیسے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ عابدوں میں سے، 1000 عابدوں سے एक फकीर शैतान को सख्त नागवार होता है, हजार आबिद है ना उसको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक पुख्ता इल्म वाला होता है ना उसको वो बुरा लगता है, क्योंकि उसको पता है कि जब पुख्ता इल्म आ जाता है तो फिर कैसे चेंज आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि लोगों में से कुछ अल्लाह वाले हैं, अब सारे ही अपने आप को अल्लाह वाले समझते हैं, लेकिन हदीस में है कुछ अल्लाह वाले अहलुल्लाह है। लोगों ने पूछा वो कौन है या रसूलुल्लाह, आपने फरमाया वो कुरान वाले हैं और अल्लाह के खास लोग हैं, अहलुल कुरान, अल्लाह के खास लोग, स्पेशल पीपल। तो ये इल्म में रसूख से आता है। और देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि पुख्ता इल्म वाले कौन है, फरमाया जिसकी कसम सच्ची हो, जिसकी जुबान रास्त को, यानी सीधी बात, साफ बात, सच्ची बात, सही बात करने वाली, जिसका दिल सलामत हो, जिसका पेट हराम से बचा हुआ हो और जिसकी शर्मगाह जिना से बची हुई, वो हैं पुख्ता इल्म वाले, रासे खूना पे इल्म वो हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑनर है जो यहाँ पे दिया गया। यार इसको इस तरह से भी पढ़ा गया है, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखूना फिल इल्म, इसकी तावील अल्लाह जानता है और रासिखूना फिल इल्म जानते हैं, इस तरह से भी पढ़ी गई है ये आयत, यानी वक्फ यहाँ पे। लेकिन ज्यादा बेहतर यही लगती है कि अल्लाह ही उनकी तावील जानता है और जो रासिखूना फिल इल्म है वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम बस ईमान लेकर आए। तो अब देखना यह है कि हम क्या चाहते हैं अपने लिए, कि हम रसूख पाए इल्म में या सतही सा इल्म ले, शैलो शैलो नॉलेज, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, कुछ सीखा कुछ नहीं सीखा, बस अपने आप को समझा कि बस मैंने पढ़ लिया ना, बस मेरे पास डिग्री तो है ही, तो अब क्या सब आता है मुझे, ये भी एक होता है। तो हम अपने लिए कैसा इल्म चाहते हैं वैसा ही पाएंगे ना।